एक तरफ अमृता की शादी की तैयारी हो रही थी तो दूसरी तरफ सब आकाश को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी आस्तिक को पता चलता है कि आकाश अपने फार्म हाउस पर है और वो नशे की हालत में वहां पर घोड़े बेचकर सो रहा है। आस्तिक ने संदीप का नंबर निकलवाया और फिर संदीप को कॉल मिला दी। संदीप अभी भी फार्म हाउस में ही था और आकाश के उठने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके नंबर पर आस्तिक की कॉल आती है, उसके चेहरे पर पसीना नजर आने लगता है। वो जल्दी से फोन उठाते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून राजा साहब, तुम जानते हो मुझे, इसका मतलब तुम ये भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, ये बताओ आकाश कहाँ है, आस्तिक ने अपने सख्त अंदाज में संदीप से कहा। तो संदीप अपने थूक को निगलते हुए कहता है, राजा साहब सर तो सो रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कल से पहले उठेंगे। दरअसल उन्होंने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और फार्म हाउस आते ही वो सो गए हैं। आस्तिक कस के अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारे सर को होश आ जाए तो उसे कहना जल्द से जल्द घर पहुंचे। यहाँ पर उसके स्वागत की तैयारी अलग से करके रखी जाएगी। उसकी वजह से उसकी माँ कितनी परेशान हो रही है इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है उस लड़के को। संदीप डरते हुए जल्दी से कहता है, जी राजा साहब, जैसे ही सर जागते हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। आस्तिक फोन रख देता है और उसके बाद अरुणिमा को बता देता है कि आकाश किसी काम से फार्म हाउस गया हुआ है। दरअसल उसने आकाश की ड्रिंक वाली बात नहीं बताई थी, अगर उसे ये पता चल जाता तो अरुणिमा को बहुत बुरा लगता। अरुणिमा इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानती। जहां एक तरफ अनंत शराब को हाथ तक नहीं लगाता है और सिगरेट से कोसों दूर रहता है, तो ये सब आकाश की जिंदगी का हिस्सा है और वो इन सब के बिना नहीं रह सकता है। अगर अरुणिमा को ये पता चल जाता तो उसका दिल कितना टूटता और उसे कितना दर्द होता, ये सोचकर कि अपने एक बच्चे को तो उसने इतनी अच्छी परवरिश दी और उसका दूसरा बच्चा कैसे बिगड़ गया। इसीलिए आस्तिक ने अरुणिमा के सामने ये बात नहीं कही कि आकाश नशे की हालत में फार्म हाउस में पड़ा हुआ है, बल्कि उसने ये कहा कि वो किसी जरूरी काम में फंस गया है। आकाश के बारे में सुनकर अरुणिमा को शांति मिली, कम से कम वो सुरक्षित तो है, ये सोचकर ही अरुणिमा ने तसल्ली कर ली। और अब सब लोग अमृता की शादी में लग गए थे। शाम तक अमृता की बारात आ चुकी थी। महल में एक अलग ही रौनक लगी हुई थी। मैरून रंग के लहंगे में अगर अमृता आसमान से आई किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं पर पीच ऑरेंज कलर के राजस्थानी लहंगे में भूमि भी कमाल की लग रही थी। बाकी सबने साड़ियां ही पहनी हुई थी, लेकिन उन साड़ियों में भी कमाल की कारीगरी थी। कोई भी साड़ी मामूली नहीं थी, और होती भी कैसे, राजा साहब के घर की शादी है। तभी महल के दरवाजे पर एक आर्मी की जीप आकर रुकती है और उसमें से कार्तिक बाहर निकलता है। कार्तिक कीर्ति और रजत का बेटा है, जो इस समय मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है। रजत अपनी तरह अपने बेटे को भी देश सेवा में लगाना चाहता है, इसीलिए उसने बचपन से ही कार्तिक को मिलिट्री और आर्मी के बारे में बताना शुरू कर दिया था, जिससे कि धीरे धीरे कार्तिक का इंटरेस्ट आर्मी की तरफ जाने लगा। और फिजिकल ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद कार्तिक अब मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है। कार्तिक को आया देख सब खुश थे, सब कार्तिक से मिल रहे थे और कार्तिक की ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन अरुणिमा उनके पास आती है और कहती है, बस बस तुम लोग उसे सांस तो लेने दो, अभी अभी तो आया है। और आने के साथ ही सब अपने सवालों की पोटली लेकर बैठ गए हैं। कार्तिक तुम कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, बहन की शादी है, ऐसे धूल मिट्टी वाले कपड़ों में अटेंड करोगे क्या। कार्तिक फ्रेश होकर सबसे पहले अमृता से मिलता है। अपने भाई को देखकर अमृता भी बहुत खुश होती है। अब तक बारात भी आ चुकी थी। भूमि और चंचल अमृता को लेकर बाहर गार्डन में आ रहे थे, जहां पर शादी का मंडप लगा हुआ था। आज अमृता को देखकर सबकी आंखों में पानी था, क्योंकि अमृता उनके सामने ही खेलकर बड़ी हुई थी। और आज उनकी छोटी सी अमृता इतनी बड़ी हो गई थी कि गुड़ी गुड़िया की शादी करवाते करवाते आज उसकी खुद की शादी होने जा रही है। एक फूलों की छांव बनाकर अमृता को मंडप पर लाया जा रहा था। उस फूलों की चादर का एक किनारा अनंत ने पकड़ा हुआ था तो दूसरा कार्तिक ने, आगे की तरफ से एक सिरे को सक्षम ने पकड़ा हुआ था तो दूसरा रजत ने। लेकिन इस माहौल में अमृता आकाश को याद कर रही थी। सिर्फ आकाश ही था जो यहाँ पर मौजूद नहीं था, और इस बात से अमृता का दिल दुखी हो रहा था। आहान राजस्थानी दूल्हे के लिबास में बहुत जच रहा था, हाथों में तलवार लिए वो मंडप पर बैठा था और अमृता को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। अमृता को मंडप पर लाया जाता है और आहान के बगल में बिठा दिया जाता है। पंडित जी शादी की रस्में करते हैं और सब लोग उन रस्मों को देख रहे थे। अरुणिमा कहने के लिए तो शादी में शामिल थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थी, जहां से वो आकाश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी प्रमिला जी आहान की माँ और अमृता की सास जानवी के पास आते हुए कहती हैं, बहन जी दुल्हन की विदाई हमें सूरज निकलने से पहले करनी है। आप जानती हैं ना, ससुराल में स्वागत होने के बाद दुल्हन पहली बार कुलदेवी माता के दर्शन करती है। अरुणिमा हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं, जी बहन जी मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए, शादी की रस्में होने के बाद हम सूरज निकलने से पहले ही अमृता की विदाई करवा देंगे, और फिर हमें भी तो देवी माता के मंदिर जाना है। शादी की रस्में लगभग संपन्न होने को आई थी। अमृता की मांग में सिंदूर भरा जा चुका था और उसे मंगलसूत्र पहना दिया था। बस अब उसके और आहान के फेर हो रहे थे। प्रमिला जी ने जानवी और अरुणिमा से कहा, लीजिए शादी की रस्में हो गई हैं, अब विदाई की तैयारी कीजिए, हम जल्द से जल्द दुल्हन को घर ले जाना चाहते हैं, उसके बाद सीधे कुलदेवी माता के मंदिर में मिलते हैं।
उनकी बात सुनकर जानवी के हाथ कांपने लगे थे, लेकिन अरुणिमा ने जानवी को संभालते हुए कहा, ठीक है, हम विदाई की तैयारी करते हैं। जानवी खुद को संभाल नहीं पा रही थी तो पृथ्वी खुद को कैसे संभालता। उसकी बेटी में उसकी जान बसती है और आज उस जान से प्यारी बेटी को उसे विदा करना था। आखिरकार भीगी पलकों के साथ और बहुत भावुक मन से सबने अमृता के अच्छे जीवन की कल्पना करते हुए उसकी विदाई कर दी। सूरज निकलने को हो रहा था और सबको कुलदेवी माता के मंदिर जाने की भी तैयारी करनी थी, लेकिन अरुणिमा ने सबको लिविंग रूम में आने के लिए कहा था। उसे सबके सामने कुछ जरूरी बात करनी थी।